नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में अवसंरचना में 6 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है।
बीते 11 वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए, 1 लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 के बाद से रेलवे में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 100% बिजलीकरण हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार कश्मीर घाटी और उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। पिछले एक दशक में बंदरगाह क्षमता दोगुनी से अधिक की गई है और अंतर्देशीय जलमार्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने कहा कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एक वक्तव्य में सरकार ने बताया कि देश में 54 लाख से अधिक एलपीजी रिफिल वितरित किए गए, सभी तेल शोधक कारखाने उच्च क्षमता से कार्य कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ने बताया कि अब तक लगभग 5 लाख यात्री खाड़ी से स्वदेश लौट चुके हैं। सरकार ने अब तक 938 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले 24 घंटे में 25 नाविक स्वदेश आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बदलते परिदृश्य को देखते हुए एक सक्रिय, समन्वित और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और सतर्कता बनाए रखने के महत्व का जिक्र किया। श्री सिंह ने नई दिल्ली में कई वरिष्ठ मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, हरदीप सिंह पुरी, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, के राममोहन नायडू और अन्य मंत्री उपस्थित थे। बैठक में ये निर्देश भी दिया गया कि सभी मंत्रालय और विभाग मौजूदा स्थिति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, घटनाक्रम और परामर्श MIB व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से साझा करें ताकि नागरिकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके और अफवाहों, गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। पश्चिम एशिया में ईरान ने दुबई में अमरीकी सेना के 2 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि दोनों ठिकानों पर 500 से अधिक सैनिक थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इन पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। उधर अमरीकी अधिकारियों ने अभी तक हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सुरक्षा संबंधी चूक और आर्थिक संकट का आरोप लगाया। उन्होंने ममता बनर्जी की अवैध प्रवासियों को खुश करने की नीति के कारण पश्चिम बंगाल के मजदूरों की कम मजदूरी और दयनीय स्थिति को भी उजागर किया। श्री शाह कोलकाता में जोनो गोनर चार्जशीट कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्ष के दमन और कुशासन को उजागर करने वाले एक दस्तावेज का अनावरण भी किया। 2026 विधानसभा चुनावों के संबंध में पुदुचेरी सहित अन्य राज्यों में सभी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के अनुसार पहले दिन मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एग्जिट पोल आयोजित नहीं किए जा सकते और न ही उनके परिणाम प्रकाशित या प्रसारित किए जा सकते हैं। नेपाल की नई सरकार ने घोषणा की है कि वे 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे राजनीतिक नेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने 100 सूत्रीय शासन सुधार एजेंडे में कहा कि 15 दिनों के भीतर एक प्रभावी संपत्ति जांच समिति का गठन किया जाएगा। 19वें इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।